हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। एटी, वीरेश, चंद्रिका और समर तीनों जंगल में चलते हुए ज्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं। उन लोगों को भी पता नहीं कि वो कहाँ जा रहे हैं। तभी वीरेश की नज़र बहुत दूर से उठाते हुए धुएं पर पड़ती है। समर और चंद्रिका की नज़र उस तरफ नहीं जाती, लेकिन वीरेश को इस तरह से जंगल के बीच वो आग लगी होना बहुत ही अजीब लगता है, क्योंकि जंगल में जल्दी कभी भी आग नहीं लगती, और अगर लगती भी है तो वो जंगल के बीच सूखे पेड़ के पत्तों में, इस तरह से पहाड़ों के बीच किसी खंडहर के चारों तरफ आग लगना बहुत ही अजीब था। वो लोग अभी वहां से काफी ज्यादा दूर थे, लेकिन फिर भी वीरेश को उसकी शक्तियों की वजह से आसपास इन सारी चीजों का पहले ही पता चल जाता था, इसलिए दूर से ही उसे वो घर और उसके आसपास लगी हुई आग भी नजर आ रही थी। पहले तो उसे सिर्फ धुआं ही नजर आया था, लेकिन फिर वो समर और चंद्रिका से आगे चलता हुआ वो उस तरफ आया तो पहाड़ी के एकदम किनारे पर खड़े होकर उसे वो धुआं दिखाई दिया। क्योंकि वीरेश उस पहाड़ी के एकदम किनारे पर खड़ा हुआ था और उसके पीछे ही चंद्रिका और समर भी वहां पर आए, और चंद्रिका उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, यहां से ही नीचे कूदने का इरादा है क्या? क्योंकि जिस काम के लिए हम निकले थे अभी तक उसके जरा सा भी नजदीक नहीं पहुंच पाए हैं। चंद्रिका की ये बात सुनकर वीरेश समझ नहीं पाया कि वो उसे ताना मार रही है या फिर उसकी फिक्र कर रही है, इसलिए वो अपने ही अंदाज में जवाब देता हुआ बोला, ठीक है माना कि अब तक हम राजकुमारी को नहीं ढूंढ पाए, फिर भी उसके लिए मैं आत्महत्या क्यों करूंगा भला? मेरे गुरुजी ने कभी भी मुझे इस तरह से हार मानना नहीं सिखाया है, और मौत के आगे तो हम कभी खुद से घुटने नहीं टेकते, हमें शूर वीरों की तरह लड़ते हुए मृत्यु प्राप्त होती है। वीरेश ने बहुत ही ज्यादा जोश में आते हुए चंद्रिका की बात का जवाब दिया, जबकि चंद्रिका ऐसा कुछ भी सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। उसकी बातें सुनकर चंद्रिका एकदम ही चिढ़ती हुई सी बोली, पता नहीं क्या बोलते रहते हो तुम, और जरा जरा देर में तुम्हारी ये बकवास शुरू हो जाती है। तुम्हें ये समझ नहीं आता कि हमें इन बातों में जरा भी दिलचस्पी नहीं है, और अगर तुम हमारी मदद नहीं कर सकती तुम्हें खुद भी पता नहीं है कि वसुंधरा कहां पर मिलेगी, तो फिर तुम आई ही क्यों हमारे साथ? बोल तो ऐसे रही हो जैसे कि अगर मैं तुम्हारे साथ ना आता तो तुम बस कुछ ही घंटे में वसुंधरा को ढूंढ लेती और उसे वापस लेकर महल भी चली जाती। वीरेश ने तुरंत ही उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, तो इस बात पर चंद्रिका का मुंह बन गया, क्योंकि असल में तो उसे भी कुछ नहीं पता था। यहां तक चंद्रिका तो इस बारे में कोई जरा सी की भनक तक नहीं थी कि विक्रांत आखिर उसे कहां लेकर गया होगा, विक्रांत है कौन और आखिर वो चाहता क्या है, क्योंकि चंद्रिका ने तो उस दिन विक्रांत को देखा तक नहीं था। उन दोनों का आमना सामना भी नहीं हुआ, ना ही चंद्रिका उसे पहचानती है, लेकिन वीरेश का उससे आमना सामना हुआ था और उसके सामने ही वो वसुंधरा को लेकर गया, इसलिए बस चंद्रिका ने वीरेश से मदद मांगी थी। चंद्रिका फिलहाल इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहती कि बिना वीरेश की मदद के तो वो जंगल में यहां तक भी ना पहुंच पाती, इसलिए उसने उसी तरह का नकली घमंड दिखाते हुए कहा, नहीं, अगर मुझे पता होता तो मैं सच में कब का उसे लेने चली भी जाती, फिर वो विक्रांत की कैद में हो या फिर कोई भी, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम किसी से भी नहीं डरते, और अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़े वसुंधरा को बचाने के लिए फिर भी हम एक पल के लिए नहीं सोचेंगे। अभी कुछ दिनों पहले ही राजकुमारी बनी हो तुम, लेकिन तेवर तुम्हारे तो राजकुमारी वसुंधरा से भी ज्यादा हैं। वो तो कितनी अच्छी और दयालु थी, लेकिन तुम देखो कैसे लड़ रही हो मुझसे, एक तो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। चंद्रिका की बातें सुनकर वीरेश ने अकड़कर उससे कहा। वीरेश को ऐसे अकड़ते देखकर चंद्रिका भी एकदम तुनक कर बोली, हाँ तो क्या एहसान कर रहे हो मुझ पर? ये मत बोलो कि तुम्हारा काम था वसुंधरा की रक्षा करना, लेकिन तुम वो भी ठीक से नहीं कर पाया और तुम्हें उसे बात का पछतावा है, इसलिए ही तुम मेरे साथ आए हो, कोई मेरे कहने पर नहीं। उन दोनों को ऐसे लड़ते देख समर आगे आते हुए बोला, चुप करो तुम दोनों, इस तरह से आपस में लड़कर बस हम समय बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं, इसलिए ठंडे दिमाग से काम लो। और वीरेश बताओ, तुम उस तरफ क्या देख रहे थे? क्या वहां पर कोई उम्मीद है वसुंधरा के होने की? समर ने बहुत ही ज्यादा समझदारी दिखाते हुए कहा, जबकि समर से समझदारी की उम्मीद दोनों में से किसी को भी नहीं है, तो उन दोनों को ही काफी शर्मिंदगी का एहसास हुआ और ये समझ आया कि वो दोनों बेवजह ही कैसे बच्चों की तरह से लड़ रहे थे, वो भी बिना किसी बात के। और सच में जो समर ने कहा वो एकदम ठीक भी है, उन दोनों के इस तरह से लड़ने से कोई भी समस्या हल नहीं होने वाली, वो दोनों लड़कर भी सिर्फ समय ही बर्बाद कर रहे हैं। वीरेश ने भी उसी तरह सहूलियत से समर की बात का जवाब दिया, नहीं, राजकुमारी वसुंधरा तो नहीं, लेकिन वहां उस तरफ मुझे एक धुआं नजर आया है, शायद वहाँ पर आग लगी हुई है, लेकिन इसके लिए हमें यहाँ पहाड़ी से नीचे उतरकर वहाँ पर जाना होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये काम जरूर किसी नकारात्मक शक्ति का है। समर ने वीरेश की बात का जवाब देते हुए कहा, लेकिन हम वहाँ तक कैसे जाएंगे? ये पहाड़ी तो बहुत ऊँची है, और अगर दूसरी तरफ से घूम कर जाएंगे तो बहुत वक्त लग जाएगा। वीरेश की बात सुनकर चंद्रिका थोड़ा सा आगे आई और नीचे झांक कर वहाँ पहाड़ी से नीचे खाई की गहराई और फिर सामने वो पहाड़ी की तरफ देखने की कोशिश करने लगी, जहाँ से वीरेश को धुआं उठता हुआ नजर आ रहा। लेकिन काफी गौर से देखने के बाद भी चंद्रिका को वहाँ पर कुछ नजर नहीं आया, तो वो अपनी जगह से थोड़ा सा और आगे बढ़ी। वीरेश और समर आपस में बात कर रहे हैं, चंद्रिका ने अब तक कुछ नहीं बोला, लेकिन वो वहाँ से उतरने का रास्ता देख रही है। वो पहाड़ी ऊंची है, लेकिन बहुत ज्यादा ऊंची भी नहीं है, और चंद्रिका को लगा कि अगर वो सब कूद कर वहाँ से नीचे उतरे तो क्या होगा, और इसके अलावा भी जो पत्थर वहाँ पर हैं, क्या उनके सहारे वो तीनों नीचे जा सकते हैं। यही देखने के लिए वो पहाड़ी के एकदम किनारे पर खड़ी होकर नीचे झांक रही थी। तभी वीरेश की नज़र उस पर पड़ी और अपनी जगह से ही उसने चिल्लाया, क्या कर रही हो? तुम मुझे बोल रही थी, लेकिन आप क्या खुद कूदने जा रही हो? वीरेश ने जैसे ही चिल्लाकर ये कहा, समर का ध्यान भी उसकी तरफ हुआ और समर कुछ बोल पाता इससे पहले ही वीरेश की आवाज़ सुनकर चंद्रिका पीछे मुड़ी और वो कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी उसका पैर एकदम किनारे पर पड़ा और वहाँ पर जो पत्थर था वो पीछे की तरफ सरक कर टूट गया और एकदम ही चंद्रिका पूरी तरह से लड़खड़ा गई। वो पहले ही एकदम किनारे पर खड़ी हुई थी, इसलिए वो बिल्कुल भी संभल नहीं पाई। चंद्रिका के मुंह से एक तेज चीख निकली और उसने अपने हाथ पैर आगे की तरफ करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार पहाड़ी के किनारे से नीचे की तरफ गिर गई। वीरेश एकदम बिजली की तेजी से भागता हुआ उसकी तरफ आया और किनारे आकर वो एकदम ही पूरा लटक गया। उसने अपना आधा धड़ नीचे गिरा दिया और अपना हाथ नीचे किया चंद्रिका को पकड़ने के लिए, और वीरेश को वहां पर देखकर नीचे गिरती हुई चंद्रिका ने भी अपना हाथ ऊपर बढ़ाया, लेकिन उन दोनों के हाथ बस आपस में टकराए, लेकिन ना तो वीरेश और ना ही चंद्रिका एक दूसरे का हाथ पकड़ पाए और चंद्रिका उनके आंखों के सामने ही वहां से नीचे गिर गई।
चंद्रिका, नहीं!
समर वहां पर आते हुए एकदम ही तेज आवाज में सीखा, जबकि वीरेश सदमे से अपनी जगह पर एकदम ही जड़ हो चुका था, लेकिन समर की आवाज कान में पड़ते ही उसके होश जैसे वापस आए और उसने नीचे की तरफ देखा और तुरंत ही अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए उसने नीचे गिरती हुई चंद्रिका की तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन वो उसे नजर नहीं आई। वीरेश ने उसे बचाने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही सुरक्षा घेरा बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन वो समझ गया कि अगर उसे चंद्रिका नजर नहीं आई तो फिर वो उसे अपने सुरक्षा घेरे के अंदर नहीं कर सकता है, और अगर वो नीचे गिरकर जमीन से टकराई तो उसे बहुत चोट आएगी, शायद उसकी जान भी जा सकती है। और ये बात सोचते ही वीरेश ने आव देखा ना ताव और बिना कुछ सोचे समझे वो भी वहीं पहाड़ी के किनारे से नीचे की तरफ कूद गया।
क्या कर रहे हो तुम वीरेश? रुको, कम से कम मुझे कुछ बताओ तो सही, मैं यहाँ पर अकेले क्या करूँगा? और चंद्रिका, क्या वो तुम्हें नजर आ रही है?
वीरेश को भी इस तरह चंद्रिका के गिरते ही उसके पीछे वहाँ पहाड़ी के किनारे से नीचे कूदते देखा, समर एकदम ही हड़बड़ाते हुए चिल्लाया, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी आंखों के सामने क्या हो रहा है। अभी वो तीनों ही वहाँ पर खड़े हुए थे और कुछ देर पहले तक तो आपस में बात भी कर रहे थे, लेकिन फिर अचानक से ये हादसा, और क्या सच में ये सब एक हादसा था? ये सारी बातें समर के दिमाग में चलने लगी, लेकिन वीरेश ने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया और कुछ ही देर में वो भी समर की आंखों से ओझल हो गया। इस पहाड़ी के किनारे से नीचे झांकता हुआ समर बहुत ही सावधानी से वहां पर खड़ा था, क्योंकि नहीं चाहता था कि वो भी उन दोनों की ही तरह वहां से नीचे गिर जाए। वो लोगों को वहां से नीचे की तरफ जाना तो था, लेकिन शायद इस तरह से तो नहीं। वीरेश, चंद्रिका, कहाँ हो तुम दोनों? क्या तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हे भगवान, वो दोनों ठीक हों, नहीं तो महल वापस जाकर मैं माँ और पिताजी को क्या मुँह दिखाऊंगा? जीवन में पहली बार आज समर को अपनी जान से ज्यादा किसी और की जान की फिक्र हो रही है, और पहले ही वसुंधरा खतरे में थी और उसे ही ढूंढने के लिए वो लोग निकले थे, लेकिन अभी तो चंद्रिका की ही जान पर बनाई, और वो ठीक होगी भी या नहीं ये बात सोचकर समर बहुत ही घबराया हुआ है, लेकिन वो खुद को बहुत ही बेबस लाचार महसूस कर रहा है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। दूसरी तरफ वसुंधरा जमीन पर बेहोश पड़ी है और विक्रांत उसके सिर के पास ही खड़ा हुआ है। विक्रांत के पैर और वसुंधरा का सिर एक साथ ही नजर आ रहा है, और फिर वहां पर ही खड़ा हुआ विक्रांत नजर आता है, क्योंकि वसुंधरा काफी देर से उसे कुछ ना कुछ बोल रही थी, तो इससे परेशान होकर विक्रांत ने खुद ही अपनी शक्तियों से आखिर उसे बेहोश कर दिया है, क्योंकि वो उसकी बात का कोई भी जवाब उसे देना नहीं चाहता। असल में उसे जवाब देना ही पसंद नहीं है, क्योंकि कोई भी उससे सवाल नहीं करता। इस तरह से जिस तरह से पिछले 4-5 दिनों से वसुंधरा ने उसका दिमाग खराब किया हुआ है।
हाँ, बस ऐसे चुपचाप ही रहा करिए राजकुमारी जी, और ये आपका महल नहीं है जहाँ आप कुछ भी पूछेंगे और आपको तुरंत ही सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ये मेरा इलाका है, मेरी दुनिया, विक्रांत की बनाई काली दुनिया, जहाँ पर सब कुछ मेरी मर्जी से होता है और किसी को जवाब देना मेरी फितरत में नहीं है।
और फिर आपको तो यहाँ लेकर आने का एक बहुत ही बड़ा और ख़ास मकसद है, उसके बिना तो आप यहाँ से नहीं जा पाएंगे और ना ही और कोई आपके यहाँ से ले जा पाएगा,
मेरे रहते तो कभी नहीं। जमीन पर बेहोश पड़ी वसुंधरा की तरफ देखते हुए विक्रांत ने ये सब कुछ बोला और फिर जोर जोर से हंसने लगा। वो शायद अपनी जीत पर हंस रहा है या फिर वसुंधरा को बेहोश करके, लेकिन उसकी हंसी सुनने के लिए फिलहाल वहाँ पर उसके अलावा और कोई भी नहीं है, सिर्फ वसुंधरा है और वो बेहोश है।
सोचिए, क्या विक्रांत को पता चलेगा वसुंधरा और चंद्रिका का सच, और क्या समय रहते कोई पहुंच पाएगा वसुंधरा और विक्रांत तक, और उस पहाड़ी के किनारे से गिरने के बाद क्या हुआ चंद्रिका का, क्या वीरेश उसे बचा पाएगा या फिर खुद भी किसी मुसीबत में फंस जाएगा। आगे जानने के लिए